ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। माघ 12 गते नए सभामुख पद के लिए होगा निर्वाचन। उपसभामुख डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्फे ने दिया पद से इस्तीफा। राष्ट्रीय सभा द्वारा संघ प्रदेश और स्थानीय तह अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक पारित। जुमला का प्रसिद्ध मंदिर चंदननाथ का मुख्य मूर्ति मिला चोरी की 3 वर्ष के बाद। और कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ी, अब तक 3 की मौत, 200 से अधिक हुए प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा के सभामुख पद का चुनाव माघ 12 को होने जा रहा है। प्रतिनिधि सभा की आज की दूसरी बैठक में सभामुख की हैसियत में रहे ज्येष्ठ सदस्य महंत ठाकुर ने सभामुख के चुनाव के संबंध में जानकारी दी। बैठक में ज्येष्ठ सदस्य ठाकुर ने उपसभामुख डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्फे के त्याग पत्र को पढ़कर सुनाया। संघीय सचिवालय द्वारा आज सार्वजनिक की गई निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कल सभामुख पद के लिए उम्मीदवारी दर्ज की जाएगी। कल संसद भवन में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उम्मीदवारी दर्ज होगी और दोपहर 2:30 बजे उम्मीदवारों की नामावली प्रकाशित की जाएगी। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में उपसभामुख डॉ तुम्बा हाम्फे ने त्याग पत्र की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने संघ प्रदेश और स्थानीय तहों का समन्वय तथा अंतर संबंध विधेयक 2076 को सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा द्वारा प्रस्तुत विधेयक को बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक माघ 14 दोपहर 1 बजे होगी। मीडिया काउंसिल को पत्रकार आचार संहिता के अनुगमन और मेल मिलाप कराने का अधिकार मात्र देने की बात पर सांसदों ने सहमति जताई है। राष्ट्रीय सभा विधान व्यवस्थापन समिति में नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक 2075 पर हुए धारागत विचार विमर्श में सांसदों की हुई सहमति के मुताबिक दंड जुर्माना जैसे विषयों को अदालती प्रक्रिया से निराकरण किए जाने का प्रावधान विधेयक में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के माघ 9 गते गुरुवार को होने वाली राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन में वोट देने के लिए आयोग द्वारा जारी की गई मतदाता परिचय पत्र या निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र को लेकर जाने का मतदाताओं को सूचित किया गया है। निर्वाचित प्रमाण पत्र या मतदाता परिचय पत्र न होने पर नेपाली नागरिकता का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र या सरकारी निकाय द्वारा फोटो सहित जारी की गई अन्य परिचय पत्र के आधार पर वोट देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि प्रदेश नंबर 5 के प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस के नेता बलदेव पोखरेल के निधन से अत्यंत मर्माहित हुए हैं। प्रधानमंत्री ओली ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए नेता बलदेव प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बता दें कि नेता पोखरेल फोक्सो के कैंसर से पीड़ित थे। इसी तरह प्रधानमंत्री ओली ने तत्कालीन धरान नगरपालिका के पूर्व प्रमुख ध्यान बहादुर राय के निधन पर भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। नेता राय 2049 साल में तत्कालीन नेकपा एमाले की तरफ से नगर प्रमुख में निर्वाचित हुए थे। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री डॉ प्रकाश शरण महत ने कहा कि देश की आवश्यकता पूरी करने वाले सहयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। नेपाल प्रेस यूनियन कास्की द्वारा आज पोखरा में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियन चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी नेपाली जनता के हित और आवश्यकता के पक्ष में है और हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ने कहा कि नेपाल में आए पर्यटकों की सरकार पूरी सुरक्षा करेगी। राष्ट्रीय फोटो पत्रकार समूह के नेपाल दर्शन 2020 के फोटो पुस्तक लोकार्पण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा, एक पर्यटक पर आने वाली मुसीबतों से उद्धार करने के लिए सरकार हर समय तत्पर रहेगी। साथ ही मंत्री भट्टराई ने यह भी कहा कि नेपाल भ्रमण वर्ष को सफल बनाने के लिए भौतिक पूर्वाधार के काम गुणात्मक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी स्तर पर काम आगे बढ़ाया गया है। कैलाली की गोदावरी नगरपालिका 6 श्रीपुर में आज लक्ष्मी नारायण क्षय रोग प्रेषण केंद्र के उद्घाटन करते हुए मंत्री ढकाल ने सुदूर पश्चिम प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास और सुधार के लिए सरकार कटिबद्ध है। मौके पर बेल्जियम की अधिराज कुमारी एस्ट्रिड भी सहभागी थी। जिला प्रशासन कार्यालय सिंधुपाल चौक ने 12 बीसे बाजार में कल से लगाई गई अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा को स्थगित किया है। इस विषय में प्रमुख जिला अधिकारी गोमा देवी चेमजोंग ने बताया कि 12 बीसे नगरपालिका के बाजार क्षेत्र में अर्निको राजमार्ग की दोनों ओर रहे घरों के संबंध में 7 दिनों के अंदर प्रतिवेदन पेश करने हेतु छानबीन समिति गठन होने के बाद निषेधाज्ञा स्थगित की गई है। जुमला का प्रसिद्ध मंदिर चंदननाथ का मुख्य मूर्ति चोरी के 3 वर्ष के बाद मिला है। मंदिर से चोरी की गई करीब 18 किलो चांदी की दत्तात्रेय की मूर्ति सुबह चंदननाथ नगरपालिका की दान सांगू के खेत में मिला। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय जुमला ने दी। बता दें कि 2073 साल मार्ग शीर्ष 11 गते रात के समय मंदिर के मुख्य मूर्ति सहित दर्जनों बहुमूल्य मूर्ति चोरी हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के अधिकारियों का कहना है कि रहस्यमय वायरस के 139 नए मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों का पता 2 दिन के अंदर चला है। कोरोना वायरस के ये नए मामले चीन के वुहान शहर, बीजिंग और सेंजेंग में पाए गए हैं। इसी के साथ चीन में इस वायरस से प्रभावित हुए लोगों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। अब तक सांस लेने से संबंधित बीमारियों के कारण 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि की गई है। ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने बीबीसी को बताया था कि चीन के अधिकारी जो आंकड़े बता रहे हैं, असल में प्रभावित लोगों की संख्या उससे कहीं अधिक हो सकती है। वायरस बीजिंग के दक्षिण में वुहान शहर में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस वायरस का प्रकोप इसलिए और अधिक बढ़ता दिख रहा है क्योंकि बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। मरीजों के लिए इस वायरस के सैंपल की जांच प्रयोगशाला में की गई है। इसके बाद चीन के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यह एक कोरोना वायरस है। रूस के एक होटल में गर्म पानी की पाइप फटने से एक गंभीर हादसा हो गया। बहुत अधिक गर्म पानी बहने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। यह हादसा सोमवार यानी कि आज प्रेम सिटी में हुआ। इस हादसा में 3 लोग बुरी तरह से जल गए, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अस्पताल बेसमेंट ऑफ रेसिडेंटल बिल्डिंग के पास स्थित है। इसकी जानकारी जांच कमेटी ने दी। आग में जले लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर आंद्रेई बाबिकोव ने बताया कि 33 साल की एक महिला इस गर्म पानी से 33% तक जल गई है। वहीं 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है, जिनकी उम्र 28 से 25 के बीच बताया जा रहा है। रीजनल गवर्नर रेस्टेनिकाव ने बताया कि यह हादसा बेहद ही भयानक है। उन्होंने कहा कि इस पूरे हादसे की जांच के लिए एक मॉनिटरिंग सर्विस का गठन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने रेस्क्यू कर्मचारियों की तारीफ की, जिन्होंने इस हादसे में जलने वाले लोगों को बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखने को मिला है, जिसमें एक होटल के प्रवेश द्वार पर सोमवार यानी कि आज गर्म पानी फैला हुआ था, जिसके तुरंत बाद ही आपातकालीन सेवाएं लागू की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, जो यह जांच करेगी कि मौत लापरवाही के कारण तो नहीं हुई है। अब मौसम। अगले 24 घण्टों में काठमाण्डु घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमाण्डु घाटी का अधिकतम तापमान 17.2 और न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। माघ 12 गते नए सभामुख पद के लिए होगा निर्वाचन। उपसभामुख डॉ शिवमाया तुम्बा हाम्फे ने दिया पद से इस्तीफा। राष्ट्रीय सभा द्वारा संघ प्रदेश और स्थानीय तह अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक पारित। जुमला का प्रसिद्ध मंदिर चंदननाथ का मुख्य मूर्ति मिला चोरी की 3 वर्ष के बाद। और कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ी, अब तक 3 की मौत, 200 से अधिक हुए प्रभावित। इसी के साथ हिंदी समाचार से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।